शांति। क्या सुनना चाहेंगे आप? आपके मन में कोई प्रश्न है? एडवांस पार्टी। अच्छा, और क्या सुनना चाहेंगे? एडवांस पार्टी के बारे में तो बाबा भी ज्यादा नहीं सुनाता है, और बाबा कहते हैं कि जब समय होगा तो बाबा बता देंगे। और किसी के मन में कोई बात है? मम्मा बाबा के बारे में सुनना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा आपके साथ अपना अनुभव शेयर करते हैं, उसमें ही कुछ बातें आ जाएंगी। क्योंकि जब हम कोई अनुभव सुनते हैं तो अनुभव सुनने से हमें प्रेरणा मिलती है ना? क्यों हम अनुभव सुनना चाहते हैं? थोड़ा प्रेरणा मिलती है और हमें भी कुछ और पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करे ना करे, क्योंकि दुनिया में आजकल भी कहते हैं भी आप इनको थोड़ा सा उमंग उत्साह में लेकर आओ, इनको थोड़ा बताओ, थोड़ा ये भी कुछ करें। यानी हमें कोई मोटिवेट करे ना करे, लेकिन हम स्वयं ही स्वयं को मोटिवेट करते रहे। आप समझते हैं? यानी स्वयं ही स्वयं को उमंग उत्साह में रखें। और उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। और वो सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, जिसे आप देखिए, रोज हम बाबा की मुरली सुनते हैं और बाबा की मुरली में बाबा हमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बाबा हमें टाइटल के रूप में देते हैं। वो हमारी लाइफ का डेकोरेशन कहो, लाइफ का श्रृंगार कहो, या बाबा हमें जो बहुत से सम्मान देते हैं। तो अगर और कुछ नहीं तो अगर उस सम्मान को भी याद रख के हम अपने आप को उमंग उत्साह में लाते रहें, तो कभी कभी चलते चलते ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते करते जो थकावट आ जाती है, स्पेशली 8-10 साल 12 साल ज्ञान में हो गए चलते चलते, कभी कभी ऐसा लगता है ना तो पीछे हट रहे हैं ना तो आगे बढ़ रहे हैं, अवस्था जैसे ठहरी हुई है। और ठहरी हुई अवस्था कैसी होती है? जैसे ठहरा हुआ पानी कैसा होता है? कैसा होता है ठहरा हुआ पानी? तो ठहरी हुई अवस्था भी वैसी ही होती है ना। तो ऐसी अवस्था कभी हमारी आनी नहीं चाहिए, हमारी अवस्था हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और इसीलिए बाबा ने हमारी दिनचर्या भी हमें ऐसे बना के दी कि कभी भी हमें चलते चलते पुरुषार्थ मार्ग में थकावट महसूस ना हो। और देखो, शरीर की थकावट आ गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन मानसिक थकावट जो है वो शरीर की थकावट से भी खराब है। शरीर थक गया, आप आराम कर लेंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन अगर मन की थकावट आ गई तो तन भले थके ना थके, लेकिन मन की थकावट तन की और थकावट को लेकर आती है। इसलिए हम मन से कभी नहीं थके, हम हमेशा ही अपने आप को उमंग उत्साह में चलाते रहे। इसीलिए बाबा ने हमें कहा है कि रोज रोज आपको जो ये अविनाशी ज्ञान रतन बाबा सवेरे सवेरे आकर दे देते हैं, हमारी बुद्धि रूपी झोली इन ज्ञान रत्नों से भर देते हैं, उनमें से 2-4 रत्न लेके अगर सारा दिन उसका स्मरण करते रहें और उनको याद करते रहें, उनका अनुभव करते रहें, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारे पास एक भाई आते हैं, कुमार है वो भाई, शुरू से जब से वो ज्ञान में चला तब से उसके पास इतनी सी डायरी होती है, छोटी सी डायरी रखते हैं वो हमेशा। तो एक बार हम उनसे पूछ रहे थे, शेयर कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हम मुरली में से 5 पॉइंट्स निकालते हैं, बस 5 बातें, 5 शब्द, लंबी लंबी मुरली नहीं लिखता, वो 5 शब्द जो है मैं अपने प्रोफेशन में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी लाइफ में, मैं बीच बीच में उनको अप्लाई करके देखता रहता हूँ। और जब मुझे बुद्धि से खिसक जाता है तो मैं मेरी पॉकेट में से निकाल के वो देख लेता हूँ कि आज बाबा ने कौन सी 5 बातें कही थी। केवल मुरली में से 5 ही पॉइंट्स, 5 ही शब्द निकालते हैं। हर एक का लिखने का भी तरीका होता है, कई एक शब्द लिखते हैं तो उनको सारा याद आ जाता है, और कईयों को पूरा लाइन लिखना पड़ता है, वो हर एक का अपना अपना है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि अगर हम कोई भी सारी मुरली तो हमें याद नहीं रहेगी, अगर उसमें से कुछ सिलेक्टिव चीजें भी हम लिख लें, अच्छा सिलेक्टिव नहीं भी निकालना आता है, अभी जो सब बाबा बना बनाया हमें मिलता है, धारणा का सार होता है, ऊपर सार लिखा होता है, वरदान होता है, कुछ उसमें से सिलेक्ट कर लें और उसको सारा दिन जीवन के अंदर हम लाते रहें, सारे दिन के अंदर रेफर करते रहें, तो उससे भी क्या होगा, हमारा उमंग उत्साह बना रहेगा, पुरुषार्थ में जो हमारी रफ्तार आगे बढ़नी चाहिए वो रफ्तार हमारी आगे बढ़ जाएगी। इसी बात पर मुझे एक और बात याद आई, क्योंकि हमारी जो सब कुछ जो आधार है, हम जो भी कर रहे हैं, हम अलग अलग विषयों पर सुनते हैं, मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, वो सब क्यों करते हैं? मूल रूप से अगर देखा जाए जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, जो मेरी मनोस्थिति है, वो कैसी होनी चाहिए? वो स्टेबल होनी चाहिए, वो स्थिर होनी चाहिए। मनोस्थिति बार बार ऊंची नीची ना हो जाए। और ये तो है नहीं कि ब्राह्मण जीवन यदि हमने अपना लिया तो हमारा जो रास्ता है वो सुगम रास्ता है, ऐसा तो है नहीं। इसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं, ऊंचाइयां नीचाइयां आती हैं, कभी अपनों से आती हैं, कभी परायों से भी आती हैं, कभी लौकिक परिवार से आती हैं तो कभी अलौकिक परिवार से भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि अलौकिक परिवार में जब एक बार आ गए तो शायद यहाँ पर हमें कोई ऐसी बात नहीं आएगी, यहाँ पर भी कई बातें आ जाती हैं। लेकिन उन सब बातों के अंदर, उसके बीच में रहते हुए भी मुझे अपनी अवस्था को आगे बढ़ाना है, मुझे आगे चलते जाना है, क्योंकि मैंने मेरा लक्ष्य चुन लिया, अब मेरे सामने मेरा विजन क्लियर है, मेरे सामने मेरा लक्ष्य जो है वो स्पष्ट है। स्पष्ट है सबको लक्ष्य? क्या अभी भी कोई कोई सोचते हैं कि स्पष्ट नहीं है? स्पष्ट है ना लक्ष्य। हम क्या कहते हैं, देवता बनना है। और क्या बनना है? देवता बनने से पहले मुझे फरिश्ता बनना है। देवता तो हम बन ही जाएंगे जब हम बाबा के बच्चे बन गए, ये तो निश्चित है, 100% निश्चित है कि अगर मैं ब्राह्मण बन गया तो मैं देवता तो बनूंगा। हाँ, मैं सतयुग का देवता बनूंगा या त्रेता युग का देवता बनूंगा, मैं आगे वाला देवता बनूंगा, आगे नंबर में आऊंगा या पिछले जन्मों में आऊंगा देवता बनूंगा, तो मैं देवता, ये तो पक्का है ना। लेकिन कौन सा देवता बनना है, मेरे पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है, ये तो सर्टेन है। लेकिन देवता बनने से पहले मुझे क्या बनना है? हम फ्यूचर, जो मेरा भविष्य है वो सर्टेन है, ये आप बात पक्की रखना, मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो भविष्य है वो सर्टेन है। यही बाबा के नॉलेज की एक विशेषता है। आज आप देखिए दुनिया में लोग भविष्य की बात सोच रहे हैं कि दुनिया का भविष्य क्या होगा, लोग सोचते हैं हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन बाबा ने हमें हमारा भविष्य जो है एकदम निश्चित बताया है। ये 100% सर्टेन है कि हम भविष्य में देवता बनने वाले हैं, ऐसे हमारे महल होंगे, ऐसी वो दुनिया होगी, वो सब कुछ हमें निश्चित है। पक्की बात है, ये सबको ये निश्चय है कि इस पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी संशय होता है, पता नहीं वो दुनिया कैसी होगी, वो फिर सोने के महल कैसे आ जाएंगे, फिर वो कहाँ चले जाएंगे, कैसे, ऐसा तो नहीं है किसी के मन में, निश्चित है ना। लेकिन एट प्रेजेंट, भविष्य तो मेरा निश्चित है, वर्तमान मेरा कैसा है? ये जो ब्राह्मण जीवन है, मेरा वर्तमान जीवन है, वो मेरा जीवन कैसा है, और उसका लक्ष्य क्या है? मुझे फरिश्ता बनना, जिस पर कई बातें आपको बताई गई हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात सुना के आपको बताऊंगी कि हमारी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए। मनोस्थिति विचलित ना हो, वो हमेशा हमारी कोई भी बात हमारे सामने आ जाए लेकिन हम अपने मन को किसी भी कारण से हम विचलित ना होने दे, अपनी मनोस्थिति को खराब ना करें कैसी भी बात आ जाए। अभी अभी आपने सुना ना विघ्नों की बातें कि कैसे हमें अपना ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न रखना है, तो क्योंकि विघ्न कोई ना कोई आते रहते हैं, कहीं ना कहीं से आते हैं। तो एक हीरों का व्यापारी था, वो हीरों का जो व्यापारी था वो फिलोसोफर जैसा था। जैसे कुछ लोग होते ना आध्यात्मिक वृत्तियों के होते हैं, तो वो उसी प्रकार का व्यक्ति था। तो एक दिन वो जो है अपने दूसरे व्यापारियों के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था, और इतने में थोड़ी देर के बाद उसका मैनेजर आता है। मैनेजर आके कहता है अपने सेठ को कि मालिक, एक हीरा जो है वो मिल नहीं रहा है, और वो बहुत बहुमूल्य हीरा था, और वो हीरा खो गया है। अब जैसे ही उसने सुना, उस व्यापारी ने सुना, तो उसने अपनी आंख बंद कर ली। आंख बंद करके एक मिनट के बाद वो आंख खोलता है, और खोलने के बाद वो कहता है, इट इज वंडरफुल। तो उसको बड़ा हैरानी होती है, लेकिन वो जो मैनेजर होता है वो वापस चला जाता है। उसने तो सेठ को इन्फॉर्म कर दिया, और सेठ कहता है वंडरफुल है, हीरा खो गया, उसने कह दिया वंडरफुल। अब मीटिंग कंटिन्यू रहती है, शाम हो जाती है, और वो मैनेजर वापस आता है, और वापस आने के बाद वो फिर अपने मालिक को बताता है आगे। वो कहता है कि मालिक, जो वो हीरा खो गया था वो मिल गया है। अब वो फिर से आंख बंद करता है, आंख बंद करके एक मिनट के बाद आंख खोल के कहता है, इट इज इंडीड वंडरफुल। ये वंडरफुल है, बहुत अच्छा है, वंडरफुल है। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और जो दूसरे भी व्यापारी थे उनको भी आश्चर्य हुआ कि जब ये पता लगा कि हीरा खो गया तो भी कहता है वंडरफुल, अभी जब हीरा मिल गया है तो भी कहता है वंडरफुल। तो उनसे रहा नहीं गया, तो उनमें से एक व्यापारी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो उसने जवाब दिया कि जब मुझे मालूम पड़ा कि हीरा जो है वो खो गया है, तो मैंने अपनी आंख बंद की। आंख बंद करके मैंने अपने मन को टटोला। अपने मन में क्या टटोला कि जो हीरे से भी ज्यादा कीमती, हीरे से भी ज्यादा बहुमूल्य जो मेरी शांति है, वो तो नहीं कहीं खोई। तो मैंने पाया कि वो नहीं खोई, इसलिए मैंने कह दिया वंडरफुल। और फिर उसके बाद जब मुझे मालूम पड़ा कि हीरा मिल गया है वापस, फिर से मैंने अपने मन को टटोला आंख बंद करके, और उसमें मैंने क्या देखा, मैं ये टटोलने लगा कि अभी वो जो बड़ा कीमती हीरा था वो मुझे मिल गया, तो कहीं मेरा मन प्रफुल्लित तो नहीं हो उठता है। तो मैंने पाया मेरा मन प्रफुल्लित नहीं हुआ, इसलिए मैंने कह दिया इंडीड वंडरफुल। समझा आपने, क्या समझा क्या? हाँ, बाबा क्या कहते हैं इसके लिए, बाबा का कौन सा महावाक्य है इसके लिए, बाबा का कौन सा महावाक्य है? बाबा बहुत बार साकार मूल्यों में कहते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अब्बा मरे तो भी हलवा खाना। अच्छा, और कौन सा है किसमें? दुख सुख में एक बाबा हमेशा क्या कहते हैं, निंदा स्तुति लाभ हानि मान अपमान सर्दी गर्मी सब में एक समान। ऐसी हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति ऐसी, कुछ खो जाए हम कह दें वंडरफुल, और हमारी मन की शांति क्या होता है, जो बिल्कुल मन की शांति तो छोड़ो, हम बाहर से भी क्या होता है, हलचल में आ जाते हैं। तो अभी जो है परिस्थितियां, जैसे क्लासेस में बीच बीच में बात निकली भी है कि परिस्थितियों में बदलाव बहुत तेजी से आ रहे हैं और हम लोग भी इसी दुनिया में रहकर ही एक नई दुनिया के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो जब परिस्थितियों में बदलाव आता है तो हो सकता है कभी हमारी परिस्थितियों में भी बदलाव आ सकता है, लेकिन हमारी स्थिति जो है वो एक समान रहे और वो तब रह सकती है जब मेरा बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, अगर आप अनुभव सुनेंगे तो अनेकों के पास ऐसी परिस्थितियां आई और कैसे उन्होंने उन परिस्थितियों को पार किया बाबा के निश्चय से। और ऐसा भी नहीं है, बाबा परीक्षा भी बराबर लेता है, बाबा हमारे पेशेंस का टेस्ट लेता है, हमारी धीरजता का, हमारी सहनशीलता का बाबा टेस्ट लेता है, लेकिन वो कितनी मेरे में धैर्यता और सहनशीलता है वो हमें देखना होता है। लेकिन हम ये बात पक्की रखें, अगर मुझे अपनी स्व उन्नति करनी है, अगर हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारी स्थिति को हम विचलित होने ना दें। बहुत लोग आएंगे, कोई कहीं से आएगा, कभी कोई लौकिक वाले होंगे, कभी अलौकिक वाले होंगे, कहीं ना कहीं से हमारे पास परीक्षाएं आएंगे, माया भी, क्योंकि बाबा कहते हैं कोई कम नहीं है, लेकिन हम अपनी स्थिति को डामा डोल ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात जो मैंने पहले सुनाई कि अपना उमंग उत्साह हमेशा बना के रखें। तो उमंग उत्साह हमारा कैसे बना रहे, कोई भी बात हो, किसी भी बात को हम हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखें। मैं आपको इस पर भी एक कहानी सुनाऊं, सुनाऊं ना एक बातें, हाँ ये तो याद रह जाएंगी ना, ये तो नहीं भूलेंगे। अभी तो सब अलर्ट होके सुन रहे हैं ना, पीछे वाले भी सभी, हाँ ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ा अमेरिकन स्पीकर है, स्पीकर था वो हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे ना आजकल आप लोगों को मालूम होगा कि बड़े लोगों को स्पीकर्स बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? इम्प्लॉयज जो होते हैं कंपनियों के अंदर, उनका उमंग उत्साह बना रहे, प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को बुला के वहां पर लेक्चर रखाए जाते हैं। ऐसे एक अमेरिकन स्पीकर था, तो उसका नाम है ज़िग ज़िगलर। वो जो है वो आ रहा था, वो एक जगह से लेक्चर देके दूसरी जगह पे जा रहा था और वो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। उस एयरपोर्ट का नाम है कैंसस एयरपोर्ट, वो वहां बैठा हुआ था और वो पहली बार उस एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। अमेरिकन था, वो बहुत जगह जाता था, लेकिन उस एयरपोर्ट पर कोइंसिडेंस पहली बार वो आया था। तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा, थोड़ी देर के बाद एक मैडम आई वहां, एक बहन समझो आई, वो आके बोलती है उनको कि सर फ्लाइट जो है वो थोड़ी जो है फ्लाइट डिले हो गई है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो वो क्या कहता है, वो उसको देखता और कहता है फैंटास्टिक। तो वो लेडीज देखती है, उसने कहा कि फ्लाइट डिले हो गई, और वो क्या जवाब देता है, फैंटास्टिक। तो वो अपना लेडी जो है चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो वापस आती है, वही मैडम जो है वो वापस आती है और वो आकर उसको कहती है कि सर फ्लाइट जो है ना अभी थोड़ी और भी डिले होने की संभावना है और आपको जो है शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। तो वापस कहता है फैंटास्टिक। अब उसके बाद वो अपना बिजी, वो लेडी को बड़ा लगता है कि बड़ा विम्सिकल आदमी है शायद ये, मैं इसको बोल रही हूँ कि ये लाइव फ्लाइट लेट हो गई और ये कहता है फैंटास्टिक, मैं थोड़ा विचित्र सा है, मैं इसको फ्लाइट डिले की बात करी है तो कहता है कि फैंटास्टिक। फिर वो तीसरी बार लेडी आती है और वो लेडी आके इसको कहते है कि सर आज आपको रात को यहीं पर रुकना पड़ेगा और क्योंकि फ्लाइट में खराब फ्लाइट जो है वो कल जाएगी। तो वो फिर कहते हैं फैंटास्टिक। तो वो जो लेडी थी उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा कि सर मैं जब भी आपको इन्फॉर्मेशन आके देती हूँ फ्लाइट के बारे में, आप एक ही जवाब देते हैं फैंटास्टिक। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसने क्या कहा कि जब पहली बार तुमने मुझे इन्फॉर्म किया कि फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं पहली बार इस एयरपोर्ट पर आया हूँ, थोड़ी फ्लाइट में कुछ होगी खराबी, थोड़ी बहुत कुछ खराबी होगी, ठीक हो जाएगी, और तब तक मैं एयरपोर्ट, मेरे लिए पहली बार है इस पे आया हूँ, मैं थोड़ा घूम लूंगा तो मैं एयरपोर्ट देखूंगा, इसलिए मैंने कहते फैंटास्टिक, चलो मुझे टाइम मिल गया एयरपोर्ट देखने का, इसलिए मैंने कहा फैंटास्टिक। दूसरी बार जब तुमने मुझे आके इन्फॉर्म किया कि फ्लाइट थोड़ी और डिले हो गई है, शाम को जाएगी, तो मैंने सोचा ठीक है, पहली बार एयरपोर्ट पर आया हूँ, तो एयरपोर्ट पे आके यहाँ कॉफी शॉप है, कॉफी इंजॉय करूंगा, तब तक फ्लाइट ठीक हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा फैंटास्टिक। और तीसरी बार जब तुमने कहा, तो मैंने सोचा ओके, ऑफिस तो मेरे पास ही है, सब जगह एसी है, बहुत कंफर्टेबल वाला एयरपोर्ट है, यहाँ बैठ के अपना ऑफिस का काम करूंगा, तो लेडी बोलते है फैंटास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कोई भी बात हमारे सामने आती है, जैसे बाबा क्या कहते हैं, ये तो मैं ऐसे ही आपको किस्से कहानियां सुना रही हूँ, लेकिन बाबा क्या कहते हैं हमको, बाबा हमें क्या कहते हैं, बाबा हमें ये कहते हैं कि बच्चे कोई भी बात यदि आ जाए, उस बात को क्या करो, उस बात को पॉजिटिव बना के लो, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव बना देते हैं, और कभी कभी क्या होता है, वो नेगेटिव बनाने के बाद हमारा ही नुकसान होता है। तो बाबा ने तो हमें यहां तक सिखा दिया है, व्यर्थ को भी समर्थ बनाओ, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाओ, यानी कोई भी बातें अगर हमारे सामने आती हैं, चाहे वो लौकिक वाले हैं, उनकी रिलेशंस हैं, ज्ञान में चलते हैं नहीं चलते हैं, हैं तो हमसे जुड़े हुए ना, तो जब उनकी भी कोई बात आपके सामने ऐसी लगती है, उसको भी पॉजिटिव बना के चलो, तब क्या होगा, हमारा जीवन जो ये लाइफ है हमारी, वो स्मूथली रन करेगी, वो आराम से चलती रहेगी। और अगर छोटी छोटी बातों में अटक जाएंगे, ये छोटे छोटे पड़ाव आते हैं जिंदगी के, जो ऊंचाइयों निचाइयों के पड़ाव आते हैं, अगर उन्हीं पर हम अटक जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपसे थोड़े शब्दों में अपना अनुभव आपके सामने शेयर करती हूँ। जैसे मैंने आपको कल बताया था, ज्ञान हमें मिला दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र से, जब हम बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे। ऐसे हमारा बैकग्राउंड जो है, लौकिक घर का बैकग्राउंड, भक्ति वाला बैकग्राउंड था, घर में ही मंदिर था, 6:15 स्कूल में जाना होता था, और हम उससे पहले ही आरती, मतलब पूजा पाठ जो अपनी हमारी मदर ने हमें सिखाया था, वो आरती करके, और उसके बाद ही बिना आरती किए हमको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था, ये हमारे घर का नियम था पहले से। अभी 6:15 स्कूल में जाना है तो उससे पहले ही सब तैयार होके हम लोग निकल जाते थे। लेकिन ये ज्ञान हमें मिला, हमारे नेबर्स में एक बहन रहा करती थी, एक फैमिली, ऐसे वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं और वैसे भी पड़ोस में थे, तो उनके थ्रू ज्ञान का हमें मालूम पड़ा। और ओरिजिनली हमारी मदर जो हैं, वो बाबा की मुरली पढ़ा करती थी घर में, और उस समय जो मुरली थी वो थी लिथो कॉपी, ये आज जैसी मुरली प्रिंटिंग कॉपी नहीं हुआ करती थी, और A3 साइज का पन्ना हुआ करता था, वो लंबा पन्ना जो होता है ना A3 का, फुल शीट वो होती थी, और वो लिथो कॉपी होती थी जिसको साइक्लो स्टाइल करके निकालते थे, तो वो मुरली पढ़ा करती थी। तो जब हम स्कूल से वापस आते थे तो हमने अपनी मदर को कहा कि ये क्या सारा दिन कागज सा पढ़ती रहती हो, तो कहने लगी ये कागज नहीं है, ये हमारी मदर कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ लेती थी, तो वो कहती ये कागज नहीं है, ये भगवान के महावाक्य हैं, ये भगवान की मुरली है। तो हमने कहा ये मुरली कहाँ से मिलती है, तो कहा ये मुरली जो है सेंटर से मिलती है। तो सेंटर कहाँ है, वो फलानी फलानी जगह पे है, तो इसको मुरली को पढ़ने से क्या होगा, तो कहने लगी स्वर्ग में चले जाएंगे। और हमारे घर में वो चित्र लगा हुआ था, वो श्री कृष्ण वाला, जिसमें हाथ में गोला है श्री कृष्ण आ रहे हैं और पांव में नरक का गोला है, वो वाला चित्र हमारे घर में लगा हुआ था। तो जहां तक मैं समझती हूँ कि हमारी मदर को जो हमारे नेबर थे उन्होंने गिफ्ट दिया होगा, वो चित्र हमारे घर में लगा हुआ था। तो हमने अपनी मदर को कहा कि हम भी स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? तो कहने लगे हाँ तुम भी जा, सब जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुरली सुननी होगी। मुरली सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो वहां सेंटर पर जाना पड़ेगा। तो हम सेंटर पे जाएंगे। तो हमारी मदर ने कहा कि वहां सेंटर पे तो सफेद कपड़े पहन के जाते हैं। तो उनका कोई बात नहीं, सफेद फ्रॉक्स है ना हमारे पास। क्योंकि हमारा पहले से ऐसा था कि मैं 4 साल की थी जब हमने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था, और मैं 10 साल की थी, मैं हारमोनियम बिना देखे प्ले कर लेती थी। हमारे घर में म्यूजिक का बैकग्राउंड भी सबका रहा है। तो और हम शुरू से ही अपने स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया करते थे, और हमारा वैसे एकेडमिक जो है उस हिसाब से वो भी अच्छा था, दोनों प्रकार से था। तो हमारी मदर ने कहा कि ठीक है जाओ। तो हम चले गए। ये है हमारा सेंटर पे जाना शुरुआत। ना 7 दिन का कोर्स, ना टीचर्स ट्रेनिंग, हमने अपनी कुछ नहीं किया है। तो हमारी सीधी प्रवेशता हुई 7 दिन ये अपना मॉर्निंग क्लास में, और गुलजार दादी मुरली सुना रही थी। जिस दिन हम क्लास में गए तो गुलजार दादी मुरली सुना रही थी, मतलब उन्होंने पहले दिन मुरली सुनाई। जब हम गए तो वहाँ गीत बज रहा था, हमारे पुराने गीत है ना ये सारे। तो मैंने आपको कहा हम संगीत प्रिय तो थे, तो बाकी ध्यान कहीं नहीं, वो संगीत गीत में ही ध्यान था हमारा, वो जो गीत बज रहा है। और उस समय हमारा ऐसा था जो गीत एक बार सुना वो पूरा याद हो जाएगा, गीत भी याद हो जाएगा, उसकी धुन भी याद हो जाएगी। इतना हमको गीत पहले से शौक बहुत था, तो हम गीत भी सुनते थे। हमें बहुत अच्छा लगा गुलजार दादी ने मुरली सुनाई। तो ये इस तरह से हमारा वहां जाना हुआ, और फिर तो बस हमने वहां जाना शुरू कर दिया। और साथ में क्योंकि उसके बाद जो है सुधा बहन जो है हमारी बड़ी बहन, उस समय उनके एग्जाम्स चल रहे थे, और साथ में फिर बाद में वो भी आने लगी। और उसके बाद धीरे धीरे जो है सबसे पहला जो गीत है मुझे याद है, चक्रधारी बहन ने हम कन्याओं की क्लास करानी शुरू की। और हमारी क्लास हफ्ते में 3 दिन होती थी। तो सबसे पहला कोई एक प्रोग्राम था, तो सबसे पहला जो गीत हमने रचना किया वो था पवित्र बन माँ भारती पुकारते, जो अभी हमारे कैसेट्स में भी है ना। इसकी धुन ये नहीं थी, उसकी डिफरेंट थी धुन, और वो धुन थी मार्चिंग सॉन्ग की। तो पहली प्रेजेंटेशन जो हमने की वहां दिल्ली के एक प्रोग्राम में, वो थी पवित्र बन माँ भारती पुकारती। और हमने वो गीत किया स्टेज पर, और हम सारी दिल्ली से हमको निमंत्रण आने शुरू हो गए कि जो भी प्रोग्राम होता तो उनके पास, चक्रधारी बहन के पास या गुलजार दादी के पास होना था, अपनी कुमारियों को भेजो और वहां आके वो प्रोग्राम करेंगे। और वहां से हम पॉपुलर होने शुरू हुए। और उसके बाद धीरे धीरे हमने यहाँ आके, क्योंकि हम जब से हमने ज्ञान लिया है, मुझे नहीं याद आता ऐसा कोई भी साल होगा हम मधुबन में नहीं आए होंगे। जब तक हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे एवरी ईयर हम मधुबन में आते थे, और यदा कदा जगदीश भाई भी हमारी क्लासेस में आते थे, और वो हमको बहुत सी बातें सुनाते थे। वो तो बहुत सारे अनुभव हैं जगदीश भाई के साथ के भी, किस तरह से वो हमें सिखाते थे और कैसे बहुत सी बातें बताते थे। तो वो फिर हम जब यहाँ समर वेकेशंस में आते थे और यहाँ पर आकर हम प्रेजेंटेशन देते थे, और जो पुराने मधुबन के भाई हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, जब गर्मियों की छुट्टियां आती थी मधुबन इंतजार करता था कमला नगर की कुमारियां आएंगी और वहां यहाँ आके अपनी प्रस्तुति देंगे। मीन्स इस प्रकार से बाबा ने हमें अपना बनाया। जैसे कहते ना कि बाबा को जिसको अपना बनाना होता है वो कैसे भी बना लेता है, तो ये बाबा का एक तरीका था अपना बनाने का। तो क्योंकि हमारा शुरू से रुचि थी, मैं आपको बताऊं बचपन में ही हमको पहले से इंटरेस्ट था कि हमें प्लेबैक सिंगर बनना है। कितनी छोटी आयु थी तभी से ये इंटरेस्ट था कि प्लेबैक सिंगर बनना है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलते ही क्या हुआ, वो रुचि जो है वहां से हटके यहाँ पर आ गई और हमने बाकी सब कुछ छोड़ दिया। और दूसरा हमारा लक्ष्य ये था, क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली में 67 में टीवी आ गया था, आपको मालूम है 67 में वहाँ टीवी आ गया, 67 में ही मैंने टीवी में प्रोग्राम दिया था वहाँ पर, हमारा प्रोग्राम वहाँ दिया, स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम दिया, सेलेक्ट हुआ बच्चों के प्रोग्राम में गया, लेकिन उसके तुरंत बाद ज्ञान मिल गया। तो ज्ञान मिलने के बाद, ये तो हमारा एम था कि मुझे टीवी में जाके जो है, मुझे बहुत होता था कि जो न्यूज पढ़ते हैं यहाँ पर जो अनाउंस करते हैं, मुझे जाके टीवी में अनाउंसरशिप करना है, ये बचपन से हमारा लक्ष्य था। लेकिन ये दोनों ही लक्ष्य जो है, जब बाबा का ज्ञान मिला वो परिवर्तित हो गए, वो इस तरफ हमारी रुचि बढ़ी और हमने उन सबको छोड़ के यहाँ करना शुरू किया। अनुभव सुनाऊंगी तो अनुभव तो बहुत सारे हैं, बाबा ने जीवन में बहुत कुछ दिया। हम लौकिक में एक अग्रवाल परिवार से हैं, और लेकिन हमारे फादर शुरू से ही बहुत ब्रॉड माइंडेड रहे। उन्होंने अपने सब हरेक को बहुत अच्छी एजुकेशन, वो एजुकेशन में बहुत बिलीव किया करते थे कि हरेक को अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और हरेक जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये हमारे फादर की हमेशा थिंकिंग रहते थे कि इसीलिए उन्होंने हरेक को बहुत अच्छी पढ़ाई की दी। लेकिन हम जब ज्ञान में आ गए, तो ज्ञान में आने के बाद हमारा लक्ष्य बना कि हमें तो बाबा की सेवा करनी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है आम तौर से, अब हम लोग ज्ञान की रुचि में हो और फादर ये समझे, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं चलते थे काफी सालों तक, बहुत सालों के बाद हम समर्पित भी हो गए, उसके बाद वो ज्ञान में चले हैं। और वो सबसे ज्यादा हमारी प्रकाशमणि दादी जी से प्रभावित हुए थे। तो उस समय फिर क्या होता है, घर में टग ऑफ वॉर होती है ना, खींचातान होता थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो सब बातें होती हैं। हमारा लक्ष्य पक्का था और सबसे पहले सुधा बहन तो 75 में ही चली गई थी सेंटर पर रहने के लिए, उसके बाद हम भी बाद में समर्पित हुए। लेकिन मैं जो अब अपने जीवन को देखती हूँ, तो उसमें मैं दो तीन बातें जो आपके लिए लाभदायक है वो बताना चाहती हूँ, बाकी तो सब बातें हम सुनते रहेंगे। सबसे पहली बात, अगर मैं अपने जीवन को एनालाइज करती हूँ कि क्यों हम यहाँ तक पहुंचे, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी क्लास में रेगुलरिटी थी। हम स्कूल में पढ़ते थे तो उन दिनों तो सुबह की क्लास में नहीं जा सकते थे, लेकिन हमारी शाम की क्लास होती थी, हम उस क्लास में रेगुलर जाना, और छुट्टी के दिन सेंटर पर जरूर जाना सुबह क्लास करना। और उन दिनों क्लास कितने बजे होती थी, 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे हम क्लास में पहुंच जाते थे। और छुट्टी, अगर एक्स्ट्रा छुट्टी किसी दिन मिल गई तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं कि आज हमको सेंटर पर जाने को मिलेगा। और हमें इतना विश्वास था, और उस समय इनोसेंस भी बहुत थी। अब गीत तो थे एक्चुअली फिल्म के गीत, और रेडियो पर जब वो गीत आता था ना, जो हमारे सेंटर पर बजते थे गीत सारे, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, वो सारे गीत है ना, ऐसे गीत बजते थे सारे, तो हम अपनी मदर को कहा करते थे कि सेंटर का गीत आ रहा है रेडियो में। अब ये नहीं मालूम था कि वो गीत वहां बजता है, लेकिन उस समय हमको लगता था कि सेंटर का गीत रेडियो में आ रहा है। तो हमने कभी भी क्लास जो है मिस नहीं की। हमारे केवल जब हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते थे उसको छोड़ के हमने कभी भी क्लास मिस नहीं की, आज तक भी। मुरली की हमारी हमेशा नियमितता बने, एक ये बात हमने अपने जीवन में देखी। अब मैं उसको एनालाइज करती हूँ कि क्यों हमें बाबा, क्योंकि बाबा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मिला है, बहुत अनुभव कराए हैं। और मैं समझती भारत की कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहां मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि हम यूथ विंग के, जब से यूथ विंग बना तब से यूथ विंग की सेवाएं करते हैं, और साथ साथ दूसरा विंग है शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग, उसमें वो हमारे पास ही है, उसकी सेवाएं सारी सांताक्रूज में ही है, और उसकी भी हम बहुत सेवाएं करते हैं। तो मुझे नहीं, मैं नहीं समझती कोई ऐसी स्टेट होगी जहां हम नहीं गए होंगे। विदेशों में भी बहुत जगह जाना हुआ है, सेवा करने का मौका मिला है, बाबा ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन मैं कभी कभी खुद को सोचती हूँ कि इतना जो बाबा हमें देते हैं, कितना देते हैं, हम बाबा को क्या देते हैं, बाबा हमें कितना रिटर्न करते हैं। दूसरी बात हमने अपने जीवन में देखी, हमारा जो कनेक्शन था वो बड़ों के साथ था। अगर बड़ों ने जो कह दिया, वहां हमारे बड़े कौन थे, क्योंकि गुलजार दादी तो बहुत बड़े हो जाते थे, चक्रधारी बहन हमारे कॉन्टेक्ट में ज्यादा आती थी, हमारा था गुलजार दादी के साथ, जगदीश भाई के साथ, क्योंकि हम बहुत छोटी कुमारियां थी, उनके साथ ज्यादा हमारा चलता था। अगर उन्होंने जो कुछ कह दिया वो जैसे पत्थर पर लकीर है, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा हमारा। अगर अब हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था, 42 कुमारियां थी, आप सोचिए 42 कुमारियों का ग्रुप था, उस ग्रुप में से कौन बचा है? हम तीन बहनें और एक कानन बहन जो कलकत्ता की है, और एक कुसुम बहन जो बोकारो में है, बाकी सब लौकिक में चले गए। तो हम इतना बड़ा ग्रुप था हमारा, तो कभी कभी कोई कहता था कि आप यहाँ आओ, हमारे घर में आओ, फलाने आओ, तो हम दीदी से पूछते थे, अगर दीदी ने कह दिया नहीं तो नहीं। हमने कभी भी, और अगर हमें कोई भी बात, क्योंकि हमारे फादर का बिजनेस था और उनकी उनका बिजनेस इस प्रकार का था, उनके कनेक्शंस काफी लोगों के साथ थे, और कभी कभी हमें कोई वो बात आकर बताते थे, हम इतने फेथेबल थे सेंटर के लिए कि कुछ भी हमें पता लगे हम तुरंत जाके अपने बड़ों को बता दिया करते थे। क्योंकि उस समय ब्रह्मा कुमारी की इमेज और आज जो ब्रह्मा कुमारी की इमेज है बड़ी डिफरेंट है। जब हम घर से निकलते थे, हम काफी सालों तक जो वो एरिया है दिल्ली का, कमला नगर का एरिया, लोग कहते थे अच्छा वो तीन बहनें जो सेंट्रल ब्रह्मा कुमारियों में ब्रह्म कुमारी में जाती हैं, लोग ऐसे कहा करते थे। और आज जो है वही हमारे लौकिक, हमारा लौकिक परिवार बहुत बड़ा परिवार है। आज हमारा सारा लौकिक परिवार, अभी तो मेरे मदर फादर नहीं है, हमारे फादर को कहा करते थे कि आपकी लड़कियों ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। उन्होंने बहुत हमारे, हम लोगों ने बहुत सुना भी, सहन भी बहुत किया, लेकिन आज सभी परिवार, हमारे टोटल परिवार वाले ये कहते हैं कि आपके जो लड़कियों ने किया वो बहुत अच्छा किया। और हमारे सारे परिवार से केवल अभी एक हमारी कजिन सिस्टर है, और शायद वो हरियाणा में लाडवा सेंटर पर जाती है, क्योंकि हमारा जो परिवार है लौकिक परिवार सारा हरियाणा पंजाब से ही है बैकग्राउंड। हम लोग तो दिल्ली में ही बॉर्न ब्रॉटअप हुए, लेकिन हमारा परिवार जो है लौकिक परिवार सारा उसी तरफ रहता है। तो उनमें से एक कजन हमारी जो है अभी ज्ञान में चली है, बाकी कोई भी ज्ञान में नहीं चलता है, लेकिन हरेक को अभी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। तो हमारा ये था कि हमारा कनेक्शन जो था हमेशा, बड़ों ने जो कहा उसमें फिर कोई डाउट क्रिएट नहीं करना, जो उन्होंने कह दिया वो सही बात है, ऐसा हमारा राइट कनेक्शन था। और तीसरी बात एक और मैं देखती हूँ कि हमारा जो, हमने कोई भी ऐसी सेवा नहीं है जो हमने न की हो। समझो क्लास में दीदी आके सुनाती थी कि आज ये सेवा होनी है, तो हम हमेशा दीदी को जाकर कहते थे कि दीदी हमको इस सेवा में क्या करना है। हमने स्थूल सेवा भी की है, कर्मणा सेवा भी की है, एग्जीबिशन लगाना भी, एग्जीबिशन समझाना भी, एग्जीबिशन उतारना भी, सब कुछ करते थे। मुझे याद है एक बार कमला नगर से एक सीसी कॉलोनी एक जगह है, वहां पर थोड़े दूर पर वहां म्यूजियम बनना था, और पहले म्यूजियम ऐसे नहीं बनते थे जैसे ये म्यूजियम बनते ना अभी, तो बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं वो बनते हैं, पहले ऐसे नहीं थे, पहले छोटे छोटे डॉल्स हुआ करते थे और सब गुड़ियों के, राधा कृष्ण सब गुड़ियों के रूप में बना करते थे। तो म्यूजियम बन रहा था, तो जब वो गुड़ियां सारी बना रहे थे तो उसमें क्या हुआ, कृष्ण जी को बाल लगाने थे, बाल कम हो गए, बाल बचे ही नहीं लगाने के लिए उसको। तो सुधा बहन ने क्या किया, जो हमारे साथ बड़ी सिस्टर है, उन्होंने अपने बाल नीचे से काटे और कृष्ण जी को लगा दिए। शुरू से हमारा ज्ञान के प्रति, बाबा के प्रति एक अटूट निश्चय, और निश्चय भी जिसको कहते हैं ना कि एक जैसे श्रद्धा भाव होता है ना, वो बहुत भावना थी, और यही कारण है कि हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे अभी हम आते हैं, अभी तो बहुत विस्तार हो चुका है, बाबा की सेवाएं बहुत बढ़ चुकी हैं, वृद्धि हो चुकी है। यदि हमारे मन में कोई क्वेश्चन उठता है कभी भी किसी बात को लेके, कभी कोई ज्ञान की पॉइंट स्पष्ट नहीं होती है, या कोई हमें कुछ कह देता है, समझो कोई पुराने हैं कोई नए हैं, कभी नयों को पुरानों को देखकर फीलिंग आ जाती है, कभी पुरानों को देखकर नए की फिर नयों को फीलिंग आ जाती है, बहन जी अभी मैं पूछती ही नहीं है, अभी तो नए नए बच्चे आ गए हैं, अच्छा पुरानों को भूल गई है। तो ऐसी समझो कभी मन में कोई ऐसी बात कभी भी आ जाती है, उसको अपने मन तक सीमित मत रखो, क्योंकि बहनों की भी अपनी कुछ हद तक लिमिटेशंस होती हैं। तो इसलिए यदि किसी भी प्रकार की बात, ये तो मैंने एक मिसाल के रूप में आपको बात बताई, यदि कोई भी बात आपके मन में आ जाती है तो आप हमेशा उसको बहनों से क्लैरिफाई कराओ, उसको मन में मत रखो। अपना कनेक्शन हमेशा, यूं तो हमारा कनेक्शन बाबा के साथ है, लेकिन बाबा ने, अगर बाबा हमारा है तो बाबा ने हमको ये बहुत बड़ा परिवार भी दिया है, और सतयुग में भी हम अकेले राज्य नहीं करने वाले। सतयुग में भी तो हम जब राज्य करेंगे तो हमारे आगे पीछे प्रजा सब कुछ तो होगी ना, ढेर सारे राजा होंगे, महाराजा एक होगा लेकिन ढेर सारे राजा होंगे, साहूकार प्रजा होगी, प्रजा होगी ढेर होंगे, तो हम अकेले तो राज्य नहीं करेंगे ना वहाँ पे। तो परिवार को तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी मन में कोई भी बात अगर आ जाती है किसी भी बात को लेके, हमारा आपको ये कहना है कि आप अपने बड़ों से, अपनी बहनों से, उनको हमेशा कभी भी सही समय देख के और सही शब्दों में उनसे पूछ के उसको वेरीफाई कर लो। अपने मन में कभी भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखो। और दूसरी बात, वैसे तो आप सभी रोज मुरली सुनने वाले होंगे ही, और कभी कभी लोग समझते हैं चलो अभी तो इंटरनेट से मुरली मिल जाती है, लेकिन जो क्लास में आके मुरली सुनना और इंटरनेट के द्वारा मुरली पढ़ लेना या घर में बैठ के मुरली पढ़ लेना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्लास में बाबा खुद आके मुरली सुनाता है, बहन जी मुरली नहीं सुनाती हैं। मुरली कौन सुनाता है? बाबा सुनाता है। बहन जी तो सिर्फ निमित मात्र हैं, वो केवल निमित बनकर मुरली सुनाती हैं, बाकी बाबा मुरली सुनाता है, बाबा दृष्टि देता है। इसीलिए वो वाइब्रेशंस आप देखिए, इंटरनेट से आपको वो वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे, इंटरनेट से आपको भोग नहीं मिलेगा। इंटरनेट से टोली मिलेगी क्या? वो तो सेंटर में ही मिलेगी ना जाके, ठीक है ना। वो वाइब्रेशंस कैसे फील होंगे? वो तो आपको सेंटर पर जाके ही फील होंगे। तो इसलिए जहां तक हो सके, हाँ किसी की मजबूरी है, कोई बांधेली माता है, रोज नहीं आ सकती है, हर एक अपने कारण को खुद समझ सकता है, हर एक अपना जज स्वयं है कि हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए एक बार सारे दिन में सेंटर पर जरूर जाके क्लास करके आनी चाहिए। अगर ये हम करते रहे तो नेचुरल है, हमारी लाइफ जो है हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी, और जो कभी कभी हमको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, वो कभी भी डिफिकल्टी जो है, कठिनाई आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। ओम शांति। कोई याद आना चाहिए, मैं एक लाइन सुना देती हूँ, मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा, मुझे एक लाइन सुना देती हूँ। यूं तो गीत बहुत सारे आते हैं, अपने कोई गीत ध्यान में आए तो बात है। ठीक है, मैं एक गीत सुना देती हूँ जो हमारी दादी जी को बड़ा प्रिय गीत था, और हमने दादी के साथ बहुत बार वो गीत गाया है, बड़ा अच्छा गीत है, आपने पुराना गीत है वो। मैं उसकी दो लाइनें आपको सुना देती हूँ। नई चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। नई चांद होगा समान, अगर कुछ कहीं भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा, तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे। नई चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। नई चांद होगा। चलिए बाबा को याद करेंगे अभी, और शाम को मैं अभी आपको बता देती हूँ, 4:30 बजे आप यहाँ आ जाएंगे और आज बाबा को पत्र लिखेंगे। लिखेंगे ना सभी, सभी को आज बाबा को पत्र लिखना है, अपने दिल का हालचाल या अपने मन की कोई बात। मैं ये सब आपको अलग अलग बता रही हूँ, सुनते जाओ। या तो अपना दिल का हालचाल या अपने मन की कोई बात जो मन से निकल नहीं रही है, बार बार मन को सता रही है, और या फिर आपको बाबा के प्रति प्यार से, हम कैसे बाबा से बात करते हैं, तो वो कोई ऐसी बात हा? तो ऐसी कोई बात या बाबा से कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो वो उस पत्र में आज आप बाबा को लिखेंगे और पहले बाबा को संबोधन करेंगे। अब आप बाबा को कैसे देखते हैं, हाँ मेरे प्राण प्रिय, हाँ कैसे आप कैसे लिखेंगे आप, हाँ वो आपकी अपनी बात है, वो मैं नहीं बताऊंगी। तो आपको संबोधन करना है बाबा को और नीचे फिर अपना नाम लिख के उस पत्र को, या तो ये झोपड़ी में रखा रहता है ना पत्र का डालने का, वहां डाल देना, या तो बाबा के कमरे में बाहर वो बहुत बड़ा बॉक्स रखा है उसमें आपको पत्र डाल दीजिएगा। और आप देखिए, विश्वास कीजिएगा, अगर आपके कोई प्रश्न है, आपको भट्टी में यहाँ से जाने से पहले उस प्रश्न का उत्तर किसी ना किसी के द्वारा आपको अवश्य मिल जाएगा।
ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स, साकार बाबा के साथ के, मम्मा के साथ के अनुभव। दीदी का थैंक्स हम ताली बजा करके करेंगे। ओम शांति।